भारतीय न्याय प्रणाली के दोष, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम और भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरे, थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। भारत की न्याय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। एक, इंसाफ प्राप्त करने में देरी, डिले इन गेटिंग जस्टिस। कहावत है, देर से मिला न्याय ना मिलने के समान होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भारतीय न्याय प्रणाली का दोष है कि न्यायालयों में लंबी बहसें चलती रहती हैं और कई तकनीकी उलझनों के कारण मुकदमा लंबा होता रहता है। मुकदमा लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत जाती हैं और देर से न्याय मिलने से न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में 4 करोड़ से अधिक मुकदमे जमा हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई वाले मुकदमों की संख्या 1.5 लाख से भी अधिक है, जिनकी सुनवाई के लिए कई वर्ष लगेंगे और उतनी देर तक और मुकदमे इकट्ठे हो जाएंगे। न्याय प्राप्त करने में देरी के लिए न्यायालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े स्थान भी उत्तरदायी हैं, जिन्हें शीघ्र भरने की जरूरत है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई के लिए जुलाई 2014 को जमा हुए मुकदमों की संख्या नीचे दी गई है। एक, जिला और निम्न न्यायालय 3 करोड़। दो, उच्च न्यायालय 38.68 लाख। तीन, सर्वोच्च न्यायालय 59,900। भारत में न्यायाधीशों की रिक्त असामियां, वेकेंट पोस्ट्स ऑफ जजेस इन इंडिया। जून 2016 को भारत के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्त असामियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। जुडिशरी, एक, सुप्रीम कोर्ट, प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस 29, सैंक्शनल पोस्ट्स 31। दो, हाई कोर्ट्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस 582, सैंक्शनल पोस्ट्स 1016। तीन, सुबोर्डिनेट कोर्ट्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस 15,500, सैंक्शनल पोस्ट्स 20,495। पेज 274, जनसंख्या और न्यायाधीशों का अनुपात, पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ जजेस। भारत तथा कुछ अन्य देशों में 10 लाख की जनसंख्या के पीछे न्यायाधीशों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, पॉपुलेशन 10 लाख, नंबर ऑफ जजेस 41 जजेस। यूके, पॉपुलेशन 10 लाख, नंबर ऑफ जजेस 50। कनाडा, पॉपुलेशन 10 लाख, नंबर ऑफ जजेस 75। यूएसए, पॉपुलेशन 10 लाख, नंबर ऑफ जजेस 107। इंडिया, पॉपुलेशन 10 लाख, नंबर ऑफ जजेस 15। ऊपर लिखे तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में न्याय प्राप्त करने में देरी के लिए कुछ उचित कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें सुधार किए जाने की जरूरत है। दो, महंगा न्याय, एक्सपेंसिव जस्टिस। भारत में न्याय प्राप्त करना बहुत महंगा है और इस प्रकार यह गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। भारत की बार काउंसिल के सेक्रेटरी माधव मैनन का विचार है कि भारत में न्याय की सुविधाएं केवल यहां की 10% जनसंख्या को ही प्राप्त हैं। इनमें से भी केवल वे लोग ही न्यायालयों में जाते हैं जो ऊपरी वर्ग से संबंध रखते हैं। ये लोग वकीलों की ऊंची फीसें दे पाते हैं, जबकि इनके मुकाबले में गरीब व्यक्ति ना तो वकीलों की ऊंची फीसें दे पाता है और ना ही उसके पास इतना समय ही है कि वह न्यायालयों के चक्कर काटता रहे, इसलिए वह न्याय प्राप्ति से वंचित रह जाता है। तीन, जटिल न्याय प्रणाली, कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम। भारत में न्याय प्रणाली काफी जटिल भी है। गवाहों के संबंध में नियम बहुत पेचीदा हैं तथा और भी कई ऐसी तकनीकी उलझने हैं जिनमें मुकदमे लंबे होते जाते हैं। वकील कई बहाने लगाकर अधिक फीसें प्राप्त करने के लिए मुकदमों को खींचते चले जाते हैं और इस प्रकार अपने ग्राहकों को उलझाए रखते हैं। साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उनकी चालें समझ नहीं पाता, इसलिए न्याय प्रणाली को अधिक स्पष्ट बनाने की जरूरत है। चार, राजनीतिक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑन पॉलिटिकल बेसिस। संविधान की धारा 124(2) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह से जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे किए जाने की व्यवस्था की हुई है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और कानून मंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रपति तो उनके द्वारा तैयार की गई सूची पर केवल स्वीकृति ही देता है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्तियां राजनीतिज्ञों के नियंत्रण के अधीन आ जाती हैं और राजनीतिज्ञ राजनीतिक हितों से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। ये नियुक्तियां केवल उन व्यक्तियों की ही करते हैं जो उनकी राजनीतिक विचारधारा से मेल खाते हों। ऐसे न्यायाधीश कानूनदान कम और राजनीतिज्ञ अधिक होते हैं और न्यायपालिका राजनीति का मैदान बन जाती है। 5. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। यद्यपि संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत पर किए जाने के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, परंतु 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता रहा, परंतु 25 अप्रैल 1973 को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस शैलेट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन करके जस्टिस अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे तीनों ही न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। सरकार की इस कार्यवाही की हर तरफ से भरपूर आलोचना की गई और दोष लगाया गया, पेज 275, कि यह निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन श्री एम सी छागला, श्री जे सी शाह, श्री के टी देसाई, श्री पालकी बाला, श्री फ्रैंक एंथोनी, श्री मधु लिमय इत्यादि महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए महान खतरा बताया। मुंबई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वी एम तारकुंडे ने कहा कि सरकार की इस कार्यवाही ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहुत हानि पहुंचाई है और स्वतंत्र संस्था के इतिहास में यह निराशा वाला दिन है। 1977 में मुख्य न्यायाधीश श्री अजीत नाथ रे के सेवानिवृत्त होने के बाद फिर वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया और सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एच आर खन्ना की वरिष्ठता का ध्यान न रखते हुए दूसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री एम एच बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, जिसके रोष उपरांत जस्टिस खन्ना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद भले ही मुख्य न्यायाधीश श्री वाई वी चंद्रचूड़, श्री पी एन भगवती, श्री आर एस पाठक, श्री वेंकटा रमैया, श्री सब्यासाची मुखर्जी, श्री रंगानाथ मिश्रा, श्री एम एच कानिया, एम एन जस्टिस वेंकटा चलैया, श्री अजीज मुशब्बर अहमदी, जस्टिस जगदीश शरण वर्मा तथा जस्टिस आदर्श सेन आनंद, जस्टिस एस पी भरूचा, जस्टिस बी एन कृपाल की नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर ही की गई हैं, परंतु खतरा है कि इस प्रथा को भविष्य में तोड़ा भी जा सकता है, जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। 6. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। संविधान की धारा 126 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, जिसकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसी की भी सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। 7. न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उनकी विचारधारा की परख, कंसिडरेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ जजेस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स। गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय के बाद सरकार ने ये मन बना लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसे व्यक्तियों को ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा जिनकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से मेल खाती होगी और वे अपने आदर्शवाद को छोड़कर सरकार की नीतियों को वास्तविक रूप दिए जाने में सहायता करें। भूतपूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री मोहन कुमार मंगलम ने लोकसभा में बोलते हुए कहा था, हम ऐसे न्यायाधीश चाहते हैं जो ये समझ सकें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, समझ सकें कि हवा चल रही है और पहचान सकें कि संसद की प्रभु सत्ता है और संसद की भविष्य से संबंधित शक्तियां प्रभु सत्ता संपन्न है। वी डू वॉन्ट जजेस हु आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग इन आर कंट्री, द विंड ऑफ चेंज दैट इज गोइंग अक्रॉस इन आर कंट्री, who is able to recognize that parliament is sovereign, that parliament's powers in relation to future are sovereign powers, श्री मोहन कुमार मंगलम। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उनकी विचारधारा को आधार बनाना उनकी कार्य स्वतंत्रता को सीमित करता है। 8. सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च पदों पर नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स ऑन हाई ऑफिसेज आफ्टर रिटायरमेंट। यद्यपि संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके लिए वकालत करने की मनाही की गई है, परंतु उन्हें अन्य उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च पद प्राप्त करने के लालच में सरकार के विरुद्ध निर्णय देने में संकोच करेंगे। इस प्रकार उनसे निष्पक्षता की आशा नहीं की जा सकती। कानून आयोग लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी ऐसी नीतियां त्यागने के लिए कहा है। राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ एनडीए की सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी साथाशिवम को 3 सितंबर 2014 को केरला के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और सरकार की इस कार्यवाही की भरपूर आलोचना की गई थी। पेज 276। 9. न्यायाधीशों की राजनीतिज्ञों द्वारा आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस बाय पॉलिटिशियंस। जब भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई ऐसा निर्णय दिया गया है जो सरकार की इच्छा के अनुकूल नहीं होता, तो राजनीतिज्ञों द्वारा न्यायाधीशों की भरपूर आलोचना की जाती है। 1967 में गोलकनाथ मुकदमे और 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्सों की समाप्ति से संबंधित मुकदमों के निर्णयों की राजनीतिज्ञों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। संसद के कई सदस्य तो महाभियोग चलाकर न्यायाधीशों को पद से अलग करने की बातें भी करते थे। इससे न्यायपालिका का सम्मान कम होता है। संविधान में किए गए 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित किए जाने और 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन संबंधी न्यायपालिका द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्र में राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ एनडीए की सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा न्यायपालिका की सख्त आलोचना की गई थी और न्यायपालिका को अपने कार्यक्षेत्र की सीमाओं के रहने के लिए कहा गया था। इससे न्यायपालिका के सम्मान और उत्साह में कमी आती है। 10. संवैधानिक संशोधन और न्यायपालिका की स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ जुडिशरी। अलग अलग संशोधनों द्वारा भी न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने के प्रयत्न किए गए हैं। अनेक कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में सम्मिलित करके न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के 42वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को काफी सीमित किया गया था, जो बाद में 43वें और 44वें संशोधन द्वारा ठीक किया गया। ऐसी प्रवृत्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए गंभीर खतरा हैं। 11. न्यायपालिका के निर्णयों को कार्यकारी आदेशों से दबाना, टू ओवरसाइट द डिसीजंस ऑफ जुडिशरी थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। साधारणतः देखने में आता है कि जिन निर्णयों को सरकार पसंद नहीं करती उनको कार्यकारी आदेशों से दबा दिया जाता है तथा इस प्रकार न्यायपालिका के निर्णय को अर्थहीन बना दिया जाता है। 12. न्यायाधीशों का संदेहास्पद चरित्र, डाउटफुल कैरेक्टर ऑफ द जजेस। न्यायाधीशों की ईमानदारी और निष्पक्षता पर भी संदेह किया जाता है और इससे न्यायपालिका की मान मर्यादा को काफी धक्का लगा है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ईएम वेंकटा रमैया द्वारा दिसंबर 1989 को अपने विदायगी भाषण में कहा गया था कि उच्च न्यायालयों के काफी न्यायाधीश शाम को वकीलों और अन्य उच्च लोगों के साथ बैठकर शराब पीते हैं, जो न्यायपालिका के मान सम्मान के लिए काफी हानिकारक है। जस्टिस श्री ईएम वेंकटा रमैया द्वारा न्यायाधीशों के निकट संबंधियों के उनके न्यायालय में वकालत करने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की गई थी, क्योंकि सामान्यतः देखने में आता है कि न्यायाधीशों के सुपुत्र और दामाद उनकी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। 13. न्यायपालिका और भ्रष्टाचार, जुडिशरी एंड करप्शन। पिछले कुछ समय से अन्य सेवाओं की तरह ही न्यायपालिका पर भी भ्रष्टाचार के दोष लगाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का न्यायपालिका में विश्वास समाप्त हो रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों, दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के डिप्टी रजिस्ट्रारों और एक न्यायाधीश और पंजाब के एक जिला और सेशन जज के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों ने न्यायपालिका के मान सम्मान को काफी बदनाम किया है। 16 नवंबर 2004 को मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सिफारिश पर सरकार द्वारा 22 न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर दिया गया था। 18 सितंबर 2004 को प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा न्यायपालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कहा गया था। अक्टूबर 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री बालाकृष्णन द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुमित्रा सेन के विरुद्ध महाभियोग चलाकर उन्हें पदच्युत करने की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती निर्मल यादव को हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल द्वारा रिश्वत के रूप में 15 लाख रुपए भेजे गए थे, जो गलती से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्यायाधीश के पास पहुंच गए थे और न्यायपालिका में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार के इस तरह के अन्य अनेक उदाहरण हैं। 14 नवंबर 2009 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ वकीलों द्वारा राष्ट्रपति पेज 277 को पत्र लिखकर कर्नाटका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीडी दिनाकरन को उनके संदिग्ध आचरण के कारण सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त न किए जाने की प्रार्थना की गई थी, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। जस्टिस पीडी दिनाकरन पर स्रोतों से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने के आरोप लगाए गए थे, जिनकी पुष्टि भी हो गई थी। मई 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालयों के 170 न्यायाधीशों को उनकी संदिग्ध भूमिका होने के कारण कार्यकाल पूरा होने के पहले सेवामुक्त कर दिया गया था। न्यायपालिका का उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना और उनके हितों की रक्षा करना होता है, और यदि न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाए तो उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। 16 सितंबर 2010 को भारत के भूतपूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट तैयार करके आरोप लगाया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व 16 मुख्य न्यायाधीशों में से 8 निश्चित रूप में भ्रष्ट थे। न्यायपालिका में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार की पुष्टि इसी तथ्य से होती है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुमित्रा सेन और सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन को संसद में उन पर चलाए गए महाभियोग इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा था, जिस कारण उन दोनों न्यायाधीशों द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र दिए गए थे। 14 न्यायपालिका और अनुशासनहीनता ज्यूडिशरी एंड इनडिसिप्लिन। न्यायपालिका में नित्य प्रति बढ़ रही अनुशासनहीनता भी एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर तुरंत काबू पाए जाने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 21 न्यायाधीशों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के व्यवहार के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए सामूहिक रूप में छुट्टी पर चले जाना न्यायपालिका में बढ़ रही अनुशासनहीनता का ताजा उदाहरण है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे नियंत्रित करने के बारे में अपनी विवशता प्रकट की गई थी। न्यायाधीशों में बढ़ रही अनुशासनहीनता संबंधी अपने विचार प्रकट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीएन खरे ने कहा था, संविधान निर्माताओं को नहीं पता था कि 50 वर्ष बाद सब कुछ भिन्न भिन्न हो जाएगा। अब समय आ गया है कि संविधान में संशोधन द्वारा मुख्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के निरीक्षण की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट नो दैट आफ्टर 50 ईयर्स थिंग्स विल कोलैप्स। नाउ टाइम हैज कम दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी गिवन पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस ओवर द हाई कोर्ट्स बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस बीएन खरे। निष्कर्ष कंक्लूजन। ऊपर हमने कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का वर्णन किया है जो भारत में न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है, और दिन प्रतिदिन न्यायपालिका पर ऐसे दबाव बढ़ते जा रहे हैं। यदि ऐसे दबाव रोके नहीं गए तो वह दिन दूर नहीं जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वप्न बनकर रह जाएगी। प्रसिद्ध पत्रकार श्री कुलदीप नैयर ने अपने लेख बदकिस्मत मुठभेड़ अनफॉर्चुनेट कन्फ्रंटेशन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी टकराव का वर्णन किया है और लिखा है कि इसको रोकने की आवश्यकता है।